यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 23 अक्टूबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। यूएन दिवस पर महासचिव ने फिर दोहराई वैश्विक युद्ध विराम की अपील। इंसानियत के साझा दुश्मन कोविड-19 के खिलाफ एकजुट जंग की पुकार। लीबिया में युद्धरत पक्षों के बीच समझौता, अमन के लिए जागी नई उम्मीद। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने भारत में मानवाधिकार स्थिति पर जताई चिंता। कोविड-19 महामारी की आड़ में फैले दुष्प्रचार का सामना करने के लिए अपुष्ट संदेशों व गलत जानकारी को शेयर करने से पहले सोचने की अपील। और कोविड-19 अपडेट के साथ साथ कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव यानी विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपनी मोबाइल डिवाइस पर हमारा न्यूज ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के मौके पर कहा है कि संगठन की 75वीं वर्षगांठ एक वैश्विक महामारी के दौर में आई है और ऐसे में संगठन का संस्थापना मिशन पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है। उन्होंने 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दुनिया भर में हर जगह सभी लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि इसी के बल पर इंसानियत के सामने दरपेश विशाल चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। महासचिव ने यूएन दिवस पर दिए संदेश में संगठन के संस्थापना मूल्यों व सिद्धांतों की तरफ ध्यान आकर्षित किया, जिनमें मानव गरिमा को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की हिफाजत करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना और मानवता को युद्ध से बचाना शामिल है। यूएन प्रमुख ने विश्व शांति की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जब महामारी शुरू हुई थी तो उन्होंने एक वैश्विक युद्ध विराम का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि आज हमारी दुनिया में हमारा एक साझा दुश्मन है कोविड-19। वैश्विक युद्ध विराम हासिल करने के लिए शांति की खातिर प्रयास बढ़ाने का अभी बिल्कुल सही समय है, क्योंकि समय बीता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने ग्रह के साथ भी शांति का रिश्ता कायम करना होगा। जलवायु संकट ने जीवन को ही खतरे में डाल दिया है। हमें वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कार्बन निष्पक्षता की स्थिति हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को सक्रिय करना होगा। बहुत से देशों और कंपनियों ने ये लक्ष्य हासिल करने के लिए पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। महासचिव ने कहा,
Around the world, we must do more to end human suffering from poverty, inequality, hunger and hatred and fight discrimination on the basis of race, religion, gender or any other distinction.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि दुनिया भर में हमें गरीबी, विषमता, भुखमरी और नफरत से होने वाली मानवीय तकलीफें कम करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे, और नस्ल, धर्म, लिंग व अन्य किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ जंग लड़नी होगी। महामारी के दौरान महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा में भयावह बढ़ोतरी देखी गई है। हमें अब तक हुई प्रगति को आगे बढ़ाना होगा। कोविड-19 की एक सुरक्षित, किफायती और सभी को उपलब्ध होने वाली वैक्सीन के लिए सराहनीय वैश्विक सहयोग बन रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि टिकाऊ विकास लक्ष्य हमें पुनर्बहाली का प्रेरणादायक ब्लूप्रिंट मुहैया कराते हैं। हमारे सामने विशाल चुनौतियां हैं। हम वैश्विक एकजुटता व सहयोग के बल पर इन चुनौतियों पर पार पा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र इसी के लिए मौजूद है। यूएन प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र न केवल आपके साथ है, संयुक्त राष्ट्र आपका ही है और दरअसल आप ही संयुक्त राष्ट्र हैं, यानी हम सब। उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि आइए एक साथ हम सब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल्यों को जीवंत रखें। आइए दशकों के दौरान हासिल की गई प्रगति को आगे बढ़ाएं। आइए सभी के लिए एक बेहतर दुनिया का साझा सपना साकार करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने लीबिया में युद्धरत पक्षों के बीच यूएन द्वारा मध्यस्थता प्रयासों के फलस्वरूप शुक्रवार को जिनेवा में हुए युद्धविराम समझौते का स्वागत किया है। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन की प्रमुख स्टेफनी विलियम्स ने इसे एक ऐसा साहसिक कदम करार दिया है जिससे लीबियाई जनता के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस समझौते का स्वागत किया।
I welcome the signing of a ceasefire agreement by the Libyan parties in Geneva today under the auspices of the United Nations.
संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुए इस युद्ध विराम समझौते का स्वागत करते हुए यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि ये सहमति लीबिया में शांति और स्थिरता की दिशा में लिया गया कदम है। सभी पक्षों ने आपसी मतभेदों को दरकिनार करके राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है, जिसके लिए वो उन्हें बधाई देते हैं। महासचिव गुटेरेश के शब्द। यूएन प्रमुख ने सभी पक्षकारों से युद्ध विराम समझौते के प्रावधानों का सम्मान किए जाने की पुकार लगाई है, ताकि उन्हें अविलंब लागू किया जा सके। यूएन प्रमुख ने लीबियाई पक्षों से मौजूदा प्रयासों की गति को बरकरार रखने और हिंसक संघर्ष के राजनीतिक समाधान की तलाश करने, आर्थिक मुद्दों को निपटाने और मानवीय राहत जरूरतों को पूरा करने में भी ऐसा ही संकल्प प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। यूएन मिशन प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की कार्यकारी विशेष प्रतिनिधि स्टेफनी विलियम्स ने जिनेवा में एक पत्रकार वार्ता में इस सहमति की घोषणा की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे देश के लिए एक बेहतर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य हासिल किया जा सकेगा। पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को वर्ष 2011 में सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से ही देश विभाजन और हिंसक संघर्ष की आंच में झुलस रहा है। पिछले अनेक महीनों से विरोधी गुट स्वयंभू लीबियन नेशनल आर्मी के कमांडर खलीफा हफ्तार के वफादार सुरक्षा बलों ने राजधानी त्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त सरकार की घेराबंदी की हुई थी। यूएन सैन्य आयोग द्वारा हुई मध्यस्थता में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसके बाद इस संबंध में शुक्रवार को सहमति की घोषणा हुई है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने भारत सरकार से मानवाधिकारों के पैरोकारों और गैर सरकारी संगठनों एनजीओज के कार्यकर्ताओं के अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने साथ ही इन कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा माहौल भी सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया जिसमें वो ऐसे अनेक संगठनों व समूहों की खातिर किया जाने वाला काम जारी रखने योग्य हो सकें जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने मंगलवार को जारी एक वक्तव्य में भारत में खासतौर से मानवाधिकारों की खातिर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज के लिए स्थान सीमित किए जाने पर अफसोस जताया। स्थान सीमित किए जाने के इन प्रयासों में ऐसे उलझे हुए और अस्पष्ट शब्दों से भरे कानून भी शामिल हैं जो गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों और विदेशी चंदे के रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि भारत में सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत रही है जो देश में और वैश्विक स्तर पर भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए असाधारण रूप में अग्रिम मोर्चों पर मुस्तैद रही है, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूं कि इन आवाज़ों को दबाने के लिए उलझे हुए और अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिशेल बाशेलेट ने विदेशी चंदा नियामन अधिनियम FCRA के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। बहुत से मानवाधिकार संगठनों व संस्थाओं ने भी यही चिंता जाहिर की है कि इस कानून की शब्दावली उलझी हुई और अस्पष्ट होने के साथ साथ इसके उद्देश्य भी बहुत कठोर हैं। इस अधिनियम में ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी चंदा स्वीकार करने पर पाबंदी लगाई गई है जो जनहित के लिए हानिकारक हों। वर्ष 2010 में वजूद में आए इस अधिनियम में सितंबर 2020 में संशोधन किया गया, जिसके बाद सभाएं करने व संगठन बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार और मानवाधिकार संगठनों व एनजीओज के अभिव्यक्ति के अधिकारों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव हुआ है। परिणाम स्वरूप भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के पैरोकारों के रूप में काम करने की उनकी क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। ये संभावना भी जताई गई है कि इस संशोधन से मानवाधिकारों के पैरोकारों के तौर पर काम करने वाले एनजीओज के लिए और भी ज़्यादा प्रशासनिक और ज़मीनी बाधाएं पैदा होंगी। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना कामकाज बंद करना पड़ा क्योंकि FCRA के कथित उल्लंघन के आरोप में उसके बैंक खाते सील कर दिए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्वव्यापी महामारी COVID-19 के बढ़ते मामलों पर शुक्रवार को चिंता जताते हुए चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में दुनिया एक अहम चरण में प्रवेश कर रही है और देशों की सरकारों को वायरस पर काबू पाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। उधर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 का मुकाबला करने के वास्ते रक्षा कवच तैयार करने के लिए एक असरदार वैक्सीन की तलाश के बीच वैक्सीन के त्वरित, सुरक्षित और दक्षतापूर्ण वितरण के लिए जरूरी प्रक्रिया को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के 4,15,00,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 11,34,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हाल के दिनों में यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़े हैं और विश्व में प्रतिदिन अब 4,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। शुक्रवार को जिनेवा में यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने स्पष्ट किया कि अगले कुछ महीने बेहद कठिन साबित होने वाले हैं और कुछ देश खतरनाक दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं।
Too many countries are seeing an exponential increase in cases and that's now leading to hospitals and ICU running close or above capacity and we're still
महानिदेशक गेब्रेयेसस कह रहे थे कि बड़ी संख्या में देश कोविड 19 संक्रमणों में भारी बढ़ोतरी देख रहे हैं और उससे अस्पतालों और गहन चिकित्सा कक्षों को लगभग अपनी पूर्ण क्षमताओं या उससे भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है और अभी अक्टूबर महीना भी पूरा नहीं हुआ है। हालात की गंभीरता के मद्देनजर यूएन एजेंसी प्रमुख ने सरकारों से अनावश्यक मौतों को टालने, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को ढहने से बचाने और स्कूलों को फिर बंद करने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की पुकार लगाई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कोविड 19 की संभावित वैक्सीन को तेजी से वितरित किए जाने के लिए जरूरी प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। इन तैयारियों के तहत इंजेक्शन के लिए 50 करोड़ से ज्यादा सिरिंज और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीदारी और भंडारण व्यवस्था को पुख्ता बनाया जा रहा है। जैसे ही कोविड 19 की संभावित वैक्सीन को सफल परीक्षणों के बाद इस्तेमाल के लिए लाइसेंस हासिल होता है, दुनिया को इंजेक्शन के लिए वैक्सीन की खुराकों के बराबर संख्या में सिरिंज की आवश्यकता होगी। इन जरूरतों के मद्देनजर यूनिसेफ इस वर्ष अपने भंडारों में 52 करोड़ सिरिंज जमा करने की व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसकी क्षमता वर्ष 2021 में बढ़ाकर 1 अरब तक करने की योजना है। वैक्सीन की खुराकें सही तापमान पर सुरक्षित रखने और उनके परिवहन के लिए यूनिसेफ और यूएन स्वास्थ्य एजेंसी मौजूदा शीत भंडारण उपकरणों और अन्य क्षमताओं की समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने दुनिया भर के लोगों को ऑनलाइन सामग्री शेयर करने यानी आगे बढ़ाने से पहले ठहरकर सोचने का आग्रह किया है, क्योंकि कोविड 19 महामारी ने एक संचार आपदा भी पैदा कर दी है जिसमें सोशल मीडिया पर झूठी सूचनाएं और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बड़े पैमाने पर फैली झूठी जानकारी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत बुधवार को प्लेज टू पॉज नामक अभियान शुरू किया। ये अभियान एक ऐसे शोध पर आधारित है जिसमें संकेत दिया गया है कि कोई सूचना या जानकारी शेयर करने या आगे बढ़ाने से पहले अगर जरा ठहर कर सोच लिया जाए तो चौंकाने वाली या भावनात्मक सामग्री शेयर करने का उतावलापन कम किया जा सकता है और झूठी सूचना या गलत जानकारी के फैलाव की रफ्तार धीमी की जा सकती है। यूएन प्रमुख ने इस अभियान के लिए जारी एक वीडियो संदेश में कहा,
During the COVID-19 pandemic, the wrong information can be deadly. Take the pledge to pause and help stop the spread of misinformation.
कोविड 19 महामारी के दौरान गलत जानकारी घातक साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आगे बढ़ाने या शेयर करने से पहले जरा ठहर कर सोचने का संकल्प लें और झूठी सूचना, गलत जानकारी व दुष्प्रचार को फैलने से रोकने में मदद करें।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। प्लेज टू पॉज अभियान का लक्ष्य मीडिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है ताकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग झूठी सूचना व गलत जानकारी की पहचान करें और खुद को भी उसे आगे बढ़ाने या शेयर करने से रोक सकें। ये नया अभियान संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई 2020 में शुरू की गई वेरीफाइड पहल का हिस्सा है। वेरीफाइड अभियान विज्ञान आधारित स्वास्थ्य जानकारी और कोविड 19 के बारे में वैश्विक एकजुटता बयान करने वाली कहानियां शेयर करने के लिए शुरू किया गया है। वेरीफाइड अभियान के तहत विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, सरकारों, प्रभावशाली हस्तियों, सिविल सोसाइटी, कारोबारों, नियामकों और मीडिया को एक ही संदेश प्लेज टू पॉज के तहत सक्रिय बनाने का लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के अध्यक्ष अवर महासचिव मेलिसा फ्लेमिंग ने इस मौके पर कहा कि कोविड 19 केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है बल्कि एक संचार आपदा भी है। उन्होंने कहा कि जब झूठी सूचना व गलत जानकारी फैलती है तो आमजन का भरोसा टूटता है और अक्सर ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनसे लोक कार्रवाई प्रभावित होती है जिसमें उनकी खुद की जिंदगी भी शामिल होती है। प्लेज टू पॉज अभियान का लक्ष्य दिसंबर 2020 के अंत तक दुनिया भर में कम से कम 1 अरब लोगों तक पहुंचना है और ये लक्ष्य ऑनलाइन व साझेदारों के सहयोग से हासिल किया जाना है। पॉज यानी ठहराव। इस अभियान को दुनिया भर के सिविल सोसाइटी संगठनों का सहयोग मिल रहा है जो झूठी सूचना व गलत जानकारी का मुकाबला करने में जुटे हैं।
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के प्रमुख लियू झेनमिन ने कहा है कि कोविड 19 महामारी से लैंगिक समानता हासिल करने के प्रयासों में व्यवधान आया है। उनके मुताबिक कोरोना वायरस संकट से पिछले दशकों में कठिनाई से हासिल हुई प्रगति पर भी खतरा मंडरा रहा है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन विभाग के शीर्ष अधिकारी ने द वर्ल्ड्स विमेन ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स नामक इस रिपोर्ट का वर्ष 2020 संस्करण पेश करते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों में भेदभावपूर्ण रवैयों में धीमी रफ्तार से बदलाव आया है। साथ ही महिलाओं का जीवन, शिक्षा, विवाह, बच्चों के पालन पोषण और मातृत्व मौतों के मामले में बेहतर हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रगति अवरुद्ध हो गई है। महिलाएं पुरुषों के समान आवाज होने से अभी दूर हैं और दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाएं अब भी हिंसा और हानिकारक प्रथाओं के विविध रूपों का शिकार हैं। वर्ष 1995 में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजिंग में हुए 4th विश्व सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने जो लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया था, दुनिया अभी उनसे दूर है। इस अवसर पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि 25 वर्ष पहले बीजिंग घोषणा पत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन पारित होने के बाद से महिलाओं के लिए समान शक्तियों और समान अधिकारों की दिशा में प्रगति लक्ष्य से दूर ही रही है। कोई भी देश लैंगिक समानता हासिल नहीं कर पाया है। शक्ति और निर्णय निर्धारण के क्षेत्र में नई रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में प्रबंधकों की कुल संख्या का महज 28% महिलाएं थी। यह लगभग 1995 में मौजूद रहे आंकड़ों के समान है। साथ ही जिन उद्यमों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से सिर्फ 18% में वर्ष 2020 में एक महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO है। राजनीतिक जीवन में, संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और वैश्विक स्तर पर 2 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन अब भी सीटों की संख्या के मामले में 25% का अवरोध पार करना है।
संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन यूएन वुमेन की पूर्व उप कार्यकारी निदेशक लक्ष्मीपुरी को लैंगिक समानता और ही फॉर शी अभियान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। लक्ष्मीपुरी ने यूएन न्यूज हिंदी की सहयोगी अंशु शर्मा के साथ एक बातचीत में बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी संख्या में पुरुषों को साथ लाने के लिए उन्होंने किस तरह अपनी टीम का नेतृत्व किया। सुनिए ये इंटरव्यू।
ही फॉर शी अभियान संयुक्त राष्ट्र और यूएन वुमेन की सबसे सफल अभियानों में से एक रहा है। अभियान शुरू होने के दौरान आपने यूएन वुमेन का नेतृत्व संभाला हुआ था। ये अभियान कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या सोच थी, उस समय की बातें विस्तार से बताएं हमें।
ही फॉर शी, पुरुष वही जो स्त्री शक्ति बढ़ाए, अभियान का मुख्य उद्देश्य गैर पारंपरिक हितकारों को एक साथ लाकर उन्हें इस महत्वपूर्ण बदलाव के मुख्य परिवर्तक के रूप में उपयोग करना था। इस अभियान का मुख्य केंद्र बिंदु इस बात पर आधारित था कि यह अभियान महिला सशक्तिकरण के लिए तो है ही, पर यह पुरुषों और नवयुवकों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जहां पुरुष और नवयुवक एक साथ लैंगिक समानता के समर्थन में जुटे, इसके प्रवर्तक बने और इसे जन चेतना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि व्यापक तौर पर लोगों की मानसिकता में बदलाव आ सके। 2014 में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में एमा वॉटसन के साथ शुरू किया गए गया यह अभियान जल्द ही पुरुष नेताओं, युवाओं, स्कूल और विश्वविद्यालय परिसरों के बीच विश्व स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। एमास ने जो कहा था, जो सवाल पूछा था, अभी नहीं तो कब, अगर मैं नहीं तो कौन, विश्व भर में गूंज उठा है और नवयुवकों, महिलाओं, नवयुवतियों को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक और प्रेरित कर चुका है। पिछले 6 वर्षों में इस अभियान ने 130 करोड़ ऑनलाइन कमिटमेंट प्राप्त की है और पूरी प्रबलता से इसे आगे और भी बढ़ाना है और भारत को और सारे विश्व को इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी है।
तो फिर अभियान के दौरान ही फॉर शी स्टैम्प जारी करने का विचार कैसे आया, प्रक्रिया क्या थी और इसमें आपकी क्या भूमिका रही?
एक शक्तिशाली संदेश देने और लोगों की कल्पना पर अपनी पकड़ बनाने के लिए स्टैम्प जारी करना इस अभियान का एक दिलचस्प पहलू था। इसलिए हमने इस स्टैम्प को डिज़ाइन करने और लॉन्च करने के लिए UPA, इंडिया पोस्ट और UN वेमेन के साथ साझेदारी की। डिज़ाइन चुनने में शामिल थे और मेरा ख्याल है कि इस डिज़ाइन में अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है वो दिखाई गई है।
ही फॉर शी अभियान ने लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए लड़कों और पुरुषों से प्रतिबद्धताएं इकट्ठा की। वेबसाइट के अनुसार भारत ने दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबद्धताएं एकत्रित की। आपके हिसाब से भारत में अभियान को किस तरह लिया गया?
यह साकेत मणि और आकाशा जैसे हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने अनुकरणीय प्रयासों के कारण संभव हो सका। जो शहरों और कस्बों में घर घर गए, साइकिल रैली निकाली, छात्रों, शिक्षकों और लड़कियों के पिताओं को इकट्ठा किया और उनसे संवाद किया। हमने फरहान अख्तर, जिनके साथ मर्द कैंपेन चलाया था, जैसी मशहूर हस्तियों को भी इस अभियान से जोड़ा।
आप सुन रहे थे UN वुमेन की पूर्व उप कार्यकारी निदेशक लक्ष्मी पुरी के साथ अंशु शर्मा की बातचीत। इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम आपको याद दिला दें कि ही फर्शी अभियान से जुड़े डाक टिकट समेत भारत व संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए सभी साझा डाक टिकटों पर शनिवार 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस पर भारत स्थित संयुक्त राष्ट्र यानी UN इन इंडिया एक वर्चुअल प्रदर्शनी शुरू कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और भारत की साझेदारी में जारी ये डाक टिकट और उनसे जुड़ी कहानियां शनिवार शाम 6 बजे के बाद से UN इन इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पता है in.one.un.org। म्यांमार के विस्थापित रोहिंग्या समुदाय की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी में हुए एक दानदाता सम्मेलन में $60 करोड़ की धनराशि के चंदे का संकल्प लिया गया है। गुरुवार को ये सम्मेलन इस वादे के साथ संपन्न हुआ कि रोहिंग्या लोगों की पीड़ाओं का दीर्घकालीन समाधान निकालने के लिए संबद्ध देशों के साथ संवाद जारी रखा जाएगा। इस सम्मेलन के सह आयोजकों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रोहिंग्या मुद्दे पर ध्यान बनाए रखने के लिए एकजुट प्रयास जारी रखे जाएंगे। साथ ही अल्पकालिक गंभीर उपायों के बजाय एक सतत और स्थिरता वाले समर्थन की ओर बढ़ने की मंशा जाहिर की गई है। सम्मेलन के आयोजकों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय जवाबी कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधनों के संकल्प की घोषणा करने वाले और अन्य रूपों में रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों का समर्थन करने वाले सभी पक्षों का आभार व्यक्त किया गया। लगभग 3 वर्ष पहले म्यांमार के राखीन प्रांत में सैन्य अभियान के तहत व्यापक स्तर पर हिंसा के बाद जान बचाने के लिए रोहिंग्या समुदाय के लाखों लोगों ने अपना घर छोड़कर बांग्लादेश में शरण ली थी। करीब 8,60,000 रोहिंग्या शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज बांग्लादेश के कॉक्सिस बाजार और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, जहां उनके लिए शरणार्थी शिविर स्थापित किए गए हैं। 6 लाख रोहिंग्या अब भी राखीन प्रांत में रह रहे हैं, जहां उन्हें हिंसा और भेदभावपूर्ण बर्ताव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया और क्षेत्र के अन्य देशों में लगभग 1.5 लाख रोहिंग्या शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।